लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में लड़ाई और हिंसा में तेजी के हालात पर विचार करने के लिए रविवार 26 जनवरी को सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई। इस हिंसा में आम लोगों सहित संयुक्त राष्ट्र के कुछ शांति रक्षक भी हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियान संचालन मामलों के प्रमुख ने पूर्वी कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में विद्रोही गुट M23 और कोंगो की सुरक्षा बलों में सघन लड़ाई से उपजे हालात पर चिंता जताई है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी प्रांत की राजधानी गोमा में कई दिनों की सघन लड़ाई के बाद मानवीय स्थिति बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें मानवीय सहायता की जरूरतें बहुत विशाल हो गई हैं और सहायता क्षमताओं पर बेतहाशा स्तर का बोझ हो गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने गुरुवार को आगाह किया है कि खाद्य सामग्री खतरनाक रूप से कम हो रही है, क्योंकि पानी और बिजली की कमी ने संकट को और बढ़ा दिया है। रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों द्वारा गोमा के हवाई अड्डे पर कब्जा करने और उसे बंद करने से सहायता वितरण में बाधा आई है, जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने और झील परिवहन पर प्रतिबंधों के कारण हजारों लोग फंस गए हैं। बड़ी संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापितों, परिवारों से अलग होने और गोमा की जेलों से बंदियों के भागने के बाद महिलाओं व लड़कियों पर यौन व लिंग आधारित हिंसा का शिकार होने का खतरा है। M23 विद्रोही गुट ने सोमवार को गोमा में प्रवेश करने के बाद इस शहर के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। यह लड़ाई रवांडा में 1990 के दौर में 10 वर्ष तक तुत्सियों के खिलाफ चल रहे जनसंहार के बाद सबसे बड़ा संकट है और इस क्षेत्र में समृद्ध खनिज संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए अनेक सशस्त्र गुटों के बीच लड़ाई जारी है। इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में कुछ दिनों पहले युद्ध विराम लागू होने के बाद अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट में इसराइल के हमले दर्ज किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन राहत समन्वयक टॉम फ्लेचर ने सुरक्षा परिषद को गाजा में भयावह मानवीय स्थिति पर नवीन स्थिति से अवगत कराया है, जिसमें युद्ध की भीषण तबाही के खमियाजा भुगत रहे बच्चों की दुर्दशा पर विशेष जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने इसराइल द्वारा काबिज पश्चिमी तट के जेनिन इलाके में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसराइली सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल के गैर कानूनी इस्तेमाल की निंदा की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता थमीन अल खीतान ने शुक्रवार को जिनेवा में कहा,
The deadly Israeli operations in recent days raise serious concerns about unnecessary or disproportionate use of force.
मानवाधिकार प्रवक्ता थमीन अल खीतान कह रहे थे कि हाल के दिनों में इसराइल के जानलेवा हमलों से गैर जरूरी और जरूरत से कहीं अधिक बल प्रयोग के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें युद्ध में इस्तेमाल के लिए विकसित किए गए तरीके और साधन भी शामिल हैं। इनका प्रयोग किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों और कानून लागू किए जाने के अभियानों पर लागू मानकों का उल्लंघन होता है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता थमीन अल खीतान के शब्द। उन्होंने कहा कि इसराइल ने इन अभियानों में हवाई हमले किए हैं और संभवतः ऐसे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई हैं जो सुरक्षा के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले गुरुवार को यूएन आपदा राहत मामलों के समन्वयक टॉम फ्लेचर ने गाजा में बच्चों की भीषण तकलीफें उजागर की और मुसीबत में उनका साथ देने की पुकार लगाई। टॉम फ्लेचर ने सुरक्षा परिषद को गाजा में पिछले 15 महीनों के युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी बच्चों के दर्दनाक अनुभवों का विवरण भी दिया। उन्होंने कहा, बच्चों को मार दिया गया, उन्हें भूखा रखा गया और सर्दी से भी उनकी मौत हो गई। वे अपंग हो गए, अनाथ हो गए या अपने परिवार से बिछड़ गए।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने स्विट्जरलैंड के दावोस में 20 से 24 जनवरी तक आयोजित 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए आगाह किया है कि मौजूदा दौर में उद्देश्यहीन नजर आ रही दुनिया के अस्तित्व पर दो बड़े जोखिम मंडरा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और बिना किसी नियामन व्यवस्था के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल। इसके मद्देनजर उन्होंने चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय सहयोग का सहारा लेने पर बल दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने दावोस में जुटे प्रतिनिधियों को सचेत किया कि देशों में पारस्परिक सहयोग कम ही नजर आ रहा है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि अनेक मोर्चों पर प्रगति हुई है, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में छलांग, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास। इसके बावजूद हमारी अनेक समस्याएं बद से बदतर होती जा रही हैं, हिंसक टकरावों से लेकर असमानता और मानवाधिकारों पर प्रहार बढ़ रहे हैं। यूएन प्रमुख के अनुसार अब केवल परमाणु युद्ध ही मानवता के अस्तित्व पर खतरा नहीं है।
Today we face two new and profound threats that demand far more global attention and action because they threaten to upend life as we know it.
एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि आज हम दो नए और गहरे खतरों का सामना कर रहे हैं जिनसे निपटने के लिए दुनिया को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि उनसे उथल पुथल मच जाने का खतरा है, जलवायु संकट और बिना किसी नियम व्यवस्था के कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का इस्तेमाल। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि बड़ी संख्या में वित्तीय संस्थान और उद्योग जलवायु संकल्पों से पीछे हट रहे हैं, जो कि स्वार्थ से प्रेरित है और स्वयं को ही नुकसान पहुंचाने वाला है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के मुख्य अभियोजक ने गुरुवार को बताया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान के दो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने की एक अर्जी मुकदमा पूर्व चैम्बर में दाखिल की है। मुख्य अभियोजक करीम खान के कार्यालय द्वारा तैयार इन अर्जियों में कहा गया है कि अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने के दौरान पीड़ितों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाना शामिल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान के सुप्रीम नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा और देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी के गिरफ्तारी वारंट के लिए न्यायालय में अर्जियां दाखिल की हैं। करीम खान ने बताया कि ये अर्जियां लड़कियों, महिलाओं और तालिबान का कथित विरोध करने वाले लोगों का उत्पीड़न किए जाने की स्थिति के बारे में दाखिल की गई हैं।
My office has concluded that these two Afghan nationals are criminally responsible for persecuting Afghan girls and women, as well as persons whom the Taliban perceived.
करीम खान कह रहे थे कि मेरे कार्यालय ने निष्कर्ष निकाला है कि ये दो अफगान नागरिक अफगान लड़कियों और महिलाओं और उन लोगों को आपराधिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो लैंगिक पहचान के मामले में उनकी वैचारिक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं और जो लोग तालिबान की नज़र में लड़कियों और महिलाओं के हिमायती हैं। इन आपराधिक प्रताड़नाओं को 15 अगस्त 2021 से लेकर हाल के समय तक अंजाम दिया गया है। ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान के शब्द।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभु मेरा ईश्वर, जब भी पुकारा मैंने उसे, सुन ली मेरी पुकार,
प्रभु मेरा आसरा।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन स्थित परम धर्मपीठीय न्यायाधिकरण के न्यायिक वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने न्यायाधिकरण के अभिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के कार्य के प्रति अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त की। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि इस वर्ष दो मोतु प्रोप्रियो यानी कि स्वप्रेरणा से रचित परमाधीक्षी पत्रों मितिस इयुडेक्स डोमिनस ईसीएस और मितिस एत मिजेरिकोर्स ईसीएस की 10वीं वर्षगांठ है, जिसके साथ उन्होंने विवाह की अमान्यता की घोषणा करने की प्रक्रिया में सुधार किया था और जिसे न्यायाधिकरण ने सभी श्रद्धालुओं के लाभ के लिए योग्यता और परिश्रम के साथ लागू किया। संत पापा ने कहा कि इन मोतु प्रोप्रियो का लक्ष्य धर्माधीक्षी धर्माधीक्षों की भूमिका को केंद्र में रखना था, जो परम धर्म पीठीय न्यायाधिकरण के समीप रहकर प्रकरणों की भली प्रकार जांच कर सकें तथा उचित निर्णय दे सकें। इन मोतु प्रोप्रियो द्वारा धर्माधीक्षों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया कि विश्वासियों को इस प्रक्रिया के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी रहे, जो कि उनकी आवश्यकता की स्थिति के लिए एक संभावित समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश कभी कभी श्रद्धालु इस समाधान के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहते हैं। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि प्रक्रियाओं को निशुल्क होने की गारंटी दी जाए, ताकि कलीसिया मसीह के निशुल्क प्रेम को प्रकट कर सके, जिनके द्वारा हम सभी को मुक्ति प्राप्त हुई है। संत पापा ने कहा कि विवाह शून्यन की प्रक्रिया में उक्त सुधारों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम उन अनेक विश्वासियों की पीड़ा और आशा की उपेक्षा नहीं कर सके जो अपनी व्यक्तिगत स्थिति की सच्चाई के बारे में स्पष्टता चाहते हैं और परिणाम स्वरूप धार्मिक जीवन में पूर्ण भागीदारी की संभावना के बारे में भी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दुखद वैवाहिक अनुभव जिया है, उनके लिए विवाह की वैधता की पुष्टि करना एक महत्वपूर्ण संभावना का प्रतिनिधित्व करता है और इन लोगों को इस मार्ग पर यथासंभव आसानी से यात्रा करने में मदद की जानी चाहिए। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा 2006 में कहे गए शब्दों को उद्धृत कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा, प्रक्रियाओं को स्थापित करने वाले नियमों में कुछ मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों की गारंटी होनी चाहिए, विशेष रूप से बचाव का अधिकार और विवाह की वैधता की धारणा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य श्रद्धालुओं के जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बनाना या उनकी मुकदमेबाजी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि केवल सत्य की सेवा करना है। संत पापा ने कहा कि परिवार प्रेम के मिलन का जीवंत उपहार है, ऐसा प्रेम जो त्रिएक ईश्वर में प्रतिबिंबित होता है। जैसा कि संत जॉन पॉल द्वितीय कहा करते थे, वास्तव में विवाह की वैधता या अमान्यता का प्रत्येक न्यायोचित निर्णय कलीसिया और विश्व दोनों में अविच्छेदता की संस्कृति में योगदान देना है। संत पापा फ्रांसिस ने स्पेन के विभिन्न धर्म प्रांतों से आए उन प्रशिक्षकों और गुरुकुल छात्रों से मुलाकात की जो विगत वर्ष के अंत में दाना नदी के कारण आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इस प्राकृतिक आपदा में जान माल की गंभीर क्षति हुई थी, जिसमें 200 से अधिक लोग मर गए थे। वैटिकन स्थित क्लेमेंटिन भवन में स्पेन से आए प्रशिक्षकों और गुरुकुल छात्रों से संत पापा ने कहा, दर्द और शोक हमें आशा की ओर ले जाता है। हम उन लोगों के करीब हैं जिन्होंने जीवन को बिखरते हुए देखा है। उन्होंने कहा, अपनी भावनाओं को आपके समक्ष व्यक्त करना आसान नहीं है। उन्होंने उन समस्याओं पर विचार किया जिनका सामना सभी को करना पड़ता है। और उनके विचार विशेष रूप से भयानक प्राकृतिक आपदा से तबाह हुए क्षेत्रों में मनाई गई क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में अभिमुख हुए। उन्होंने कहा, ईश्वर आपके भीतर मिट्टी बन गए। उन्होंने कहा कि पीड़ा और शोक अपनी कठोरता के बावजूद हमें आशा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये हमें सबसे निचले स्तर पर पहुंचने और वह सब कुछ छोड़ देने के लिए मजबूर करते हैं जो आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम अकेले कर सकते हैं, यह एक असीम अंधकार है जिसे आपने अनुभव किया है। उस आपदा में आप में से बहुत से लोगों ने निस्वार्थ मदद और समर्पण से भरे चेहरे में हमें ईश्वर की कोमलता के दर्शन कराए हैं, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांस के सोलेसमिस के फ्रांसीसी बेनेडिक्टिन धर्म समाज के संस्थापक प्रभु सेवक डॉम प्रॉस्पर लुई पास्कल गुएरेंजर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कलीसिया के प्रति उनकी गहरी धार्मिक भक्ति और निष्ठा को याद किया तथा उनकी 150वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सभी विश्वासियों को उनकी बहुमूल्य विरासत को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। फ्रांस के फ्रांसीसी बेनेडिक्टिन धर्म समाज को डॉम गुएरेंजर के निधन की 150वीं पुण्यतिथि पर एक संदेश प्रेषित कर संत पापा फ्रांसिस ने 19वीं शताब्दी में फ्रांस में बेनेडिक्टिन मठवाद को पुनर्स्थापित करने तथा आधुनिक धर्म विधिक नवीनीकरण का बीड़ा उठाने वाले नायक डॉम गुएरेंजर के समर्पित जीवन के लिए प्रभु ईश्वर को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्षीय तंत्र से फ्रांसीसी कलीसिया के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग करने वाले गैलिकनिस्ट आंदोलन के कट्टर विरोधी डॉम गुएरेंजर को 20वीं सदी में आधुनिक धर्म विधिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। अपने पूर्ववर्ती संत पापाओं के साथ मिलकर संत पापा फ्रांसिस ने उनके योगदान को याद किया, विशेष रूप से 5 प्रमुख क्षेत्रों में। फ्रांस में बेनेडिक्टिन मठवासी जीवन की बहाली, आराधना अर्चना और पूजन पद्धति में उनका विद्वतापूर्ण कार्य, येसु के पवित्र हृदय और पवित्र कुंवारी मरियम के प्रति उनकी भक्ति, निष्कलंक गर्भागमन और कलीसिया के परमाध्यक्ष की अचूकता के सिद्धांतों को परिभाषित करने के लिए उनका समर्थन तथा साथ ही कलीसिया की स्वतंत्रता के प्रति उनका बचाव। संत पापा फ्रांसिस ने डॉम गुएरेंजर द्वारा कलीसिया की भाषा और उसके विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में धर्म विधि को पुनः खोजने के प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके इस महान कार्य ने पूजन पद्धति के सौंदर्य और उसकी समृद्धि को सभी के लिए सुलभ बनाया है। निकारागुआ के 3 मठों से 28 और 29 जनवरी की मध्य रात्रि में संत क्लेयर को समर्पित धर्म संघ की 30 से अधिक धर्म बहनों को अगवा कर लिया गया। मानागुआ, माटागाल्पा और चिंदेगा से अगवा की गई इन धर्म बहनों को पुअर क्लेयर्स नाम से जाना जाता है। लैटिन अमरीकी देश निकारागुआ में असहमति का दमन जारी है। मानागुआ, माटागाल्पा और चिंदेगा के मठों से निकाली गई भिक्षुणियों का भाग्य अभी भी अनिश्चित है। मई 2023 में मानागुआ के अधिकारियों ने फ्रांसिस्कन पुअर क्लेयर्स एसोसिएशन को भंग कर दिया था और हाल के वर्षों में धर्म बहनों के कई धार्मिक समूहों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है। कैथलिक धर्म संघों के दमन के साथ साथ अन्य गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध भी अत्याचार जारी हैं जो गरीबों का पक्ष लेते हैं। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।